हमने कठोपनिषद में सुना नचिकेता के बार बार प्रार्थना करने पर आचार्य मृत्यु उसे उपदेश देने के लिए तैयार होते हैं, और अपने उपदेश की भूमिका में मृत्यु शुरू करते हैं यहीं से। अन्यत् श्रेयो अन्यदुतैव प्रेय ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थात् यौ प्रेयो वृणीते। दुनिया में दो तरह के रास्ते हैं, एक श्रेय और एक प्रेय। ये दोनों अलग अलग परिणाम रिजल्ट देने वाले हैं। ये दोनों ही इंसान के पास आते हैं, मनुष्य के पास आते हैं। उनमें जो समझदार आदमी है वो श्रेय को चुनता है और उसको लाभ होता है, उसको श्रेय मिलता है, सुख मिलता है। जो कमजोर दिमाग वाला आदमी वो प्रेय को चुनता है और उसको खूब नुकसान उठाना पड़ता है। ये मृत्यु का इंट्रोडक्शन है, भूमिका है अपनी बात रखने के लिए। मनुष्य की उन्नति दो तरह से होती है। एक तो अधिक से अधिक साधन मीन्स इकट्ठा करना, सुविधाएं, संपत्ति, धन, इनको इकट्ठा करना, उनसे उन्नत होना। बहुत धन है, बहुत ज्ञान इकट्ठा किया है, बहुत नाम इकट्ठा किया है, बड़े बड़े घर बनाया है वगैरह वगैरह, ये एक उन्नति है। पर इसके साथ अगर अंदर की कोई उन्नति नहीं हुई तो अंदर से आत्मा नहीं बढ़ पाती है, वो सिर्फ शरीर की उन्नति होती है। दूसरे तरह की हमारी जो उन्नति है, जो हमारा विकास है, कि बाहर क्या बढ़ा नहीं बढ़ा उसमें कोई ध्यान नहीं है, अंदर की जो चेतना है उसको उन्नत किया, उसको बढ़ाया। ये दो तरह की दौड़ है, एक बाहर की दौड़ है, एक अंदर की दौड़ है। इंसान इन दोनों तरह की दौड़ में भाग लेता है, कुछ अंदर की दौड़ में चलते हैं, कुछ बाहर की दौड़ में चलते हैं। पर हमारी जो प्रकृति है, जो नेचर है, जो स्वभाव है, वो है बाहर की ओर दौड़ना, मतलब बाहरी दुनिया को इकट्ठा करना, बाहरी दुनिया में उन्नति करना। बाहरी दुनिया का मतलब है मेरे शरीर से बाहर की चीजें, क्योंकि ईश्वर ने जो हमें बनाया, हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो शरीर का बनावट है, उसके जो इंद्रियां हैं, जो सेंसेस है, वो बाहर की ओर मुंह करते हैं। आंखें दुनिया के हर चीज देख सकता है सिवाय अपने को। मैं दुनिया के हर चीज को छू सकता हूं, मेरा हाथ छू सकता है, पर अपने आप को मेरा हाथ नहीं छू सकता। मैं दुनिया के हर चीज को जान सकता हूं पर खुद को नहीं जान सकता। मेरा ऐसा कोई भी सेंस नहीं, कोई इंद्रिय नहीं है जो मुझे जानने के लिए मदद करे, मुझे समझने के लिए मदद करे। मेरी सारी इंद्रियां दुनिया को जानने, दुनिया में उन्नति करने, दुनिया को बटोरने के लिए है। तो आप कहेंगे फिर अंदर की यात्रा, अंदर को जानने के लिए कुछ बनाया नहीं तो जाने कैसे? अंदर को जानने के लिए किसी मीन्स के, किसी इंस्ट्रूमेंट के, किसी साधन की जरूरत नहीं होता, एहसास करना होता है। जब आप दुनिया के को देखना छोड़ दे, अंदर अपने आप दिखने लगता है। दुनिया की चीजें बटोरना छोड़ दे, अंदर की सामान अपने आप सामने आने लगता है। तो अंदर जाने के लिए कोई चीज की जरूरत नहीं है, इसलिए भगवान ने कुछ बनाया नहीं है। पर जिन चीजों को बनाया वो बाहरी दुनिया की ओर जाते हैं, इसलिए हम बाहरी दुनिया में ज्यादा भागते हैं। बाहरी दुनिया के चीजों को इकट्ठा करना मजा आता है, इसी को कहते हैं प्रेय। प्रेय का मतलब जो प्यारा हो, जो मीठा लगे, जो अच्छा लगे, ये अच्छा लगता है करने में। मान लीजिए आपने कभी जिंदगी में करोड़ों रुपए, करोड़ों डॉलर नहीं देखा, लाखों नहीं देखा, हजार नहीं देखा, तो हम अब 100 में खुश होंगे, $100 मिल जाए तो उसमें खुश होंगे, $100 में खुश होते रहेंगे। पर जिस आदमी ने करोड़ों डॉलरों को कमाया है उसके लिए $100-200 में कोई ज्यादा सुख नहीं मिलता, सुख मिलता भी नहीं है। अगर खो जाए कोई परेशानी नहीं, मिल जाए भी कोई उसको खुशी नहीं मिलती है। इसी तरह जिसको खाने का स्वाद ज्यादा मिला है, कोई बढ़िया स्वाद मिला है, तो फिर वो हल्के फुल्के फीके स्वादों पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता। अंदर का स्वाद ज्यादा है, पर प्रॉब्लम है उसको पाना बड़ा मुश्किल होता है। बाहर का स्वाद बिल्कुल रेडीमेड है, फटाफट मिल जाता है, जंक फूड है, जब चाहो तब मिल जाए और खाओ तो वो टेस्ट बन जाता है, वो टेस्ट क्रिएट करना पड़ता है और वो टेस्ट आने लग गया है तो मजा आता है। पर जब भी जिस भी व्यक्ति ने बाहरी दुनिया के साथ साथ अंदर की यात्रा की है, अंदर की यात्रा मतलब खुद को जानने के लिए कोशिश किया है, उसके फिर बाहरी दुनिया का स्वाद उसका कम होता गया है। दुनिया में इस पर बहुत कम संस्कृतियों ने, कल्चर ने, देशों ने इस पर काम किया है कि व्यक्ति टोटलिटी में, पूर्णता में सुख भोगे। इसीलिए आप देखेंगे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या अफ्रीका, साउथ एशिया के देश हो, गरीब हो या धनी हो, पढ़े लिखे या अनपढ़ हो, दुख सबको होता है, सब परेशान है, सबको अगर टेस्ट किया जाए तो दुनिया के ज्यादातर लोग गरीब है, धनी, अनपढ़ है, पढ़े लिखे, जो मानसिक, जो साइकोलॉजिकल बीमारियों से ग्रस्त हैं, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और दुनिया भर के असंतोष से ग्रस्त हैं। दुनिया में पहली बार भारत ने इस पर काम किया कि व्यक्ति दोनों कैसे दुनिया में रहते हुए इन प्यारे चीजों को भोगते हुए भी सुखी रह सकता है। उसके लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसे हम कहते हैं आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था मतलब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य जिसको आजकल आप स्टूडेंट लाइफ कहते हो, अब ब्रह्मचारी से तो लोगों को आजकल इतना समझ में आता है कि ये शादी नहीं कर रहा है, अनमैरिड, ये तो उसका बिगड़ा हुआ रूप है। ब्रह्मचर्य अवस्था में जिसको आप प्राचीन काल में, जिसको गुरुकुल में विद्यार्थी जब पढ़ता था, उस गुरुकुलीय व्यवस्था में जो 25 साल उसकी जीवन की 25 साल जो थी, वो जो विद्यार्थी जीवन था वो कष्टमय था, वो आजकल के लग्जूरियस स्टूडेंट लाइफ नहीं होता था। उनको जानबूझ के कष्ट दिया जाता था, वो राजा का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, वो चप्पल नहीं पहन सकता, वो कोई स्वाद वाला खाना खा ही नहीं सकता, उसको खाने के लिए, भिक्षा के लिए जाना पड़ता था, वो भी रोज नए घर में, पुराना जिससे जान पहचान हो गया उसके घर में जाना ही नहीं है, वो गुरु से शिकायत कर ही नहीं सकता था, उसको इतने घंटे ये काम करना ही था। इसको हम तप कहते थे। जब व्यक्ति उस तपस्या से अंदर की ओर यात्रा करता है, अपने उस जो ज्यादा स्वादिष्ट चीज है पर पता नहीं चलता, उसको जब वो स्वाद को चखता है, उसके बाद जब गृहस्थ जीवन में वो दुनियादारी के स्वाद को लेता है, फिर वो स्वाद में वो फंसता नहीं है। जो बड़े घर में रहा है उसको अब छोटे घर का कोई ज्यादा स्वाद नहीं आता है। जो बड़ा स्वाद जो अंदर वो लिया है, बाकी कम लोगों को मिला है, उस स्वाद के बाद गृहस्थ जीवन में आता है, पर ऐसे उतावला होकर के नहीं कि सारी दुनिया को लूट डाले। इसीलिए ब्रह्मचर्य आश्रम में ये ट्रेनिंग दी जाती। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म में चरना। ब्रह्म क्या है? ईश्वर या आत्मा, मतलब उसकी जो डेली लाइफ है, जो जिसको आप दिनचर्या कहते हो, वो दिनचर्या का मतलब आचरण, व्यवहार। आपके सुबह से लेकर रात तक का व्यवहार सिर्फ ब्रह्म के आसपास होना चाहिए। ब्रह्म मतलब सेल्फ, खुद के आसपास घूमना चाहिए, अपनी अंदर के आसपास होना चाहिए। बाहरी दुनिया में मैं कितना सुंदर दिखूं, कितने लोग मुझे पसंद करें, कितना मैं अच्छे मकान में रहूं, अच्छे बेड पर सोऊं, अच्छे कपड़े पहनूं, उसकी सवाल नहीं उड़े। उसके बारे में सोचना भी बड़ा पाप होता था, वो सोचो ये मना नहीं था। उसके लिए एक स्टेज फिक्स किया गया, जब तुम यहां से निकल के जाओगे खूब भोगना। पर उस समय व्यक्ति इतना तपा तपाया होता है कि खूब भोगने का सवाल नहीं उठता था। वो भोग को परखना जानता था कि कौन सा भोग कितना अच्छा है या कितना बुरा है। तो जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में अपने अंदर में उस परम आनंद को एहसास करता था, उस शरीर को तपाता था, अपने मन को तपाता था, रोकता था, और उस रोक के बीच में अपने उस ईश्वर के साथ, अपने आत्मा के साथ अपने आप को जोड़ता था, तो दुनिया के सुख उसके सामने फीका पड़ जाते थे। इसीलिए आप देखेंगे ये जो आजकल सो कल तथाकथित ब्रह्मचारी आपको मिलते हैं, ये गृहस्थियों से ज्यादा बिगड़े हुए होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रह्मचारी का अर्थ उन्होंने यही समझ लिया कि शादी नहीं करना। अब शादी नहीं करने से जो जो नेचर का डिमांड है उसको पूरा क्या करेंगे? तो फिर बिगड़े हुए काम करते हैं, फिर वो दो नंबरी, फिर वो गलत काम में फंसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अंदर का तो कोई मजा आया नहीं है। ब्रह्मचर्य में अपने आप आपका मन टूट जाता था। अब क्या जिसने जिसने रसमलाई खाया उसको क्या बेसन की लड्डू में स्वाद आएगा? बेसन की लड्डू छूट जाता था। जिसने ये अमेरिका का सुख भोगा वो कहां भारत में जाकर अब गांव में रहेगा? वो सुख के सामने वो छोटा पड़ जाता था। इसी तरह ब्रह्म में चरने में जो आनंद है वो इतना ज्यादा होता है कि बाहरी दुनिया का आनंद फीका पड़ता था। उसको वो चिंता नहीं है कि शादी करना नहीं करना, घर बनाना नहीं बनाना, पैसा इकट्ठा करना नहीं करना ना। तो वो स्वाभाविक रूप से नेचुरली ब्रह्मचारी, सो कॉल्ड ब्रह्मचारी अनमैरिड बन जाता था। जो सुख लोग शादी करके पाते तो वो बिना शादी किए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो उसके और दिमाग नहीं जाता था। अब क्या हुआ? अब वो तो रहा नहीं, अंदर की यात्रा तो खत्म हो गई। हमारे बाबा लोग भी तो सारा ब्रह्मांड घूमते उसी धन नाम वही कमाने के लिए। हमारे ब्रह्म तो क्योंकि अंदर की यात्रा रही नहीं तो बाहरी दुनिया में फंसते हैं, तो फिर नाम को ब्रह्मचर्य और कहीं कहीं लोगों से पिटाई खा के भागते हैं, कहीं आश्रम छोड़ के भागते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। तो ब्रह्मचर्य का यह अर्थ कभी नहीं रहा कि शादी नहीं करना, कभी नहीं रहा। यह रहा कि अपने आत्मा में, ब्रह्म में चरते चरते आदमी उस आनंद में इतना मग्न होता था, ये दुनियादारी की छोटी छोटी आनंद उसके सामने फीके पड़ जाते थे। जब ब्रह्मचर्य में तपने के बाद वो गृहस्थ में आता था, फिर वो जो गृहस्थ में जो जो प्रेय है, जो दुनिया का सुख है वो भोगता था, पर वो बाकी लोगों की तरह उतावला होकर के नहीं, वो अब बड़े बड़े स्वादों को चख चुका है, उसके लिए ये जिंदा रहने के लिए कुछ जरूरत चीजें वो भोगता था। तो श्रेय और प्रेय दोनों को बांधने की हमारी संस्कृति में एक व्यवस्था बनाई। फिर गृहस्थ के बाद वो 25-30 साल गृहस्थ का सुख भोगा, फिर वो सीधे वानप्रस्थ बन जाता था। वानप्रस्थ मतलब वन की ओर, जंगल की ओर दृष्टि होती थी। घर में रहता था क्योंकि अब उसका बच्चा भी ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरुकुल में पढ़ के वापस आ चुका है, उसकी शादी हो चुकी है, उसके अपने अब उसका बेटा व बेटी गृहस्थ आश्रम में आ चुके हैं। अब वो घर में रहते हुए जंगल की ओर तैयारी करता था। सामाजिक कार्य जिसको आप सोशल वर्क कहते हैं वो वानप्रस्थ आश्रम होता था। अब मुझे अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अब मुझे समाज के लिए कुछ करना है। और इसी समाज के लिए करते करते वो अपने आप को इतना, अपने आत्मा को इतना उदार बनाता था, इतना उन्नत बनाता था कि जीवन के अंतिम पड़ाव में वो संन्यास के लिए तैयार हो सके। संन्यास का मतलब सब कुछ छोड़ देना, ये दुनिया, ये शरीर से लेकर के बाहरी दुनिया तक हर चीज के प्रति वैराग्य पैदा कर देना, उसकी तैयारी करता था। तो ये जो आश्रम व्यवस्था की तैयारी थी, पहले दुख भोगाओ, इसीलिए संस्कृत में बड़ा सुंदर विद्यार्थी का जो स्टूडेंट लाइफ है उसके लिए एक लक्षण था कि सुखार्थी चेत कुतः विद्या, जो सुख चाहता है, जो प्लेजर चाहता है, जो लग्जरी चाहता है, उसके लिए कहां नॉलेज है, कहां विद्या है। विद्यार्थी चेत कुतः सुखम, और जिसका गोल, जिसका लक्ष्य विद्या है, नॉलेज है, उसके लिए कहां सुख है, कहां प्लेजर है। ये दो अलग अलग चीज माना जाता था, अब तो वो कंबाइंड हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, अब हमारा बच्चा अपने अपने शुरुआती जिंदगी में ही वो लग्जरी जीने लगता है, वो हॉस्टल में रहे या घर में रहे। इसीलिए जब वो गृहस्थ बनने से पहले ही गृहस्थ बना बनाया, वो तो ऑफिशियली तो गृहस्थ बनता है 20 22 25 साल में, वो गृहस्थ कब से बन चुका होता है, 10 12 साल की उम्र से ही उसकी शुरू हो जाती है वो करना। इसीलिए होता क्या है, जिन देशों में भोगने की प्रवृत्ति है वहां तलाक की ज्यादा प्रवृत्तियां होती है। तलाक सिर्फ मियां बीवी की नहीं, हर चीज में, घर भी बदलते हैं, बीवी भी बदलते हैं, नौकरी पर, सब कुछ, क्योंकि बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, कुछ कहीं जमने की कोई मन नहीं करता, इंद्रियों को और चाहिए, स्वाद कहीं आता नहीं है। इसीलिए हमारी जो व्यवस्था बनाई गई थी उसमें जो बाहरी दुनिया का भोग जो अच्छा लगता है वो प्रिय है, पर जो अच्छा नहीं लगता वो श्रेय है, पर जो अच्छा है, जो रियली, जो जो फैक्ट है, जो ट्रूथ है, और जो सचमुच अच्छा है, पर वो हमें अच्छा नहीं लगता, इन दोनों में समन्वय बनाया था। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद व्यक्ति गृहस्थ में आता था। गृहस्थ मतलब भोगने का स्टेज, जहां हम भोग सके। पर भोगना दो तरह के था होता है, एक तो भोगी बन के भोगते हैं, एक साक्षी बन के भोगते हैं। साक्षी मीन्स विटनेस बन के। हम दुनिया में दो तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक तो हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट करें, बिल्कुल इन्वॉल्व होकर के करें, एक में इन्वॉल्व होते हुए भी विटनेस बने रहें, सब कुछ करते हुए भी अपने आप को कहीं प्रोजेक्ट ना करें, कहीं कोई दावा ना करें कि ये मैं कर रहा हूं, सब वो विटनेस बन जाता है। और बहुत सारे लोग होते हैं कुछ भी नहीं करते, हर मामले में सबसे आगे मिलेंगे, वो भोगी होते हैं, जो एक्शन कोई भी करे रिजल्ट उनको मिलता है। और ये लोग ऊपर से आपको लगता होगा सारा नाम ले लिया, यश लिया, नहीं, ये बड़े दुखी आत्माएं होती हैं, ये अंदर से बड़े दुखी रहते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का जो मन होता है वो कभी शांत नहीं हो सकता। तो दो तरह के भोग है, एक भोगते हुए भी डिटैचमेंट के साथ, भोग रहा है पर उसको भोग का कोई एहसास नहीं, जिसको हम विटनेस कहते हैं साक्षी भाव में, और एक है भोगे या ना भोगे वो अटैच्ड है। हमने एक कहानी सुनी है छोटी सी कि किसी मंदिर में एक साधक रहते थे, साधना करते थे, पुजारी थे वो रोज, और उसके बगल में एक नाचने वाली का घर था जिसको गणिका कहते हैं, आजकल कलगर कहते हैं, वो नाचती थी, जिसको आप कहते हैं पुराने जमाने में मुगल के समय में जिसको मुजरा वगैरह कहते थे। दोनों मर गए तो यमराज के पास गए, यमराज ने, अभी यमराज की कथा ही आप सुन रहे हो, उसने चित्रगुप्त से पूछा बताओ इनको कहां भेजें, इनकी सारा डाटा निकालो। तो चित्रगुप्त ने कहा ये जो पुजारी है इसको तो नर्क भेज दो, ये जो नाचने वाली गणिका है इसको स्वर्ग भेजो। पुजारी ने फट से ऑब्जेक्शन किया, मुझे नर्क भेजो कोई बात नहीं, पता नहीं आपने क्या सोचा होगा, मेरे से ही ज्यादा चीड़ है आपको, पर ये क्या लॉजिक है कि ये बगल वाली को आप भेज रहे हो स्वर्ग, ये तो समझा दो, इसको भी नर्क भेजो कम से कम। तो यमराज ने कहा भाई बताओ इसको क्या प्रॉब्लम है, इनको डाटा समझाओ। तो चित्रगुप्त ने समझाया कि रोज सुबह शाम जरूर भगवान में भक्ति करते थे, आरती करते थे, और उधर वो नाचती थी, गाती थी, लोगों का एंटरटेन करती थी, पर जब भी ये मंदिर में पूजा करे शाम का समय दोनों जगह घंटी बजती थी, वहां वहां तबले की, हारमोनियम की, और यहां यहां ये घंटा हड़ताल की, आरती की। पर जब भी यहां आरती होती थी पुजारी जी का मन हमेशा उधर होता था, काश मैं आम आदमी होता, मैं भी उधर जाता। और वो गणिका नाचती थी पर हमेशा जब भी आरती की आवाज सुनती थी हमेशा मन में होता था काश मैं एक आम आदमी होता, एक कॉमन मैन होता, मेरे खानदानी पेशा नहीं होता, मैं भी मंदिर में जा सकती, आरती में बैठ सकती, भगवान ने मुझे इस लायक नहीं बनाया। तो जब भी आरती होती थी गणिका में ईश्वर भक्ति दिखती थी, पुजारी में गणिका भक्ति दिखती थी। ना भोग कर भी भोगने का सजा मिलता है, नहीं तो गरीब लोग सारे स्वर्ग नहीं चले जाते क्योंकि भोगते कम है। भोगने की लालसा है, अटैचमेंट है, भोगे ना भोगे। गृहस्थी दो तरह का होता है, एक साक्षी भाव से दुनिया को भोगना, विटनेस बन के सब में रहते हुए भी, जैसे कमल का पत्ता होता है ना वो पानी में होता है पर कभी भीगता नहीं है, उसके ऊपर भी पानी होता है पर वो पानी ऐसे लड़खड़ाता रहता है। एक तो जिंदगी होती है कमल के पत्ते के तरह जो पानी में जिंदगी भर रहता है पर पानी से कभी भीगता नहीं है, दूसरा है जो पानी में नाम रहते हुए भी अपने घर में रहते हुए भी कभी भी भीगा हुआ मिल जाता है। दो तरह की जिंदगी होती है, जो साक्षी भाव से जीता है उसको नरक में भी डाल दें वो सुखी मिलेगा, जो भोगी है, भोगी मन वाला है, जिसको हर चीज में भोग चाहिए इसको स्वर्ग में भी डाल दे वो दुखी मिलेगा। क्यों? भोगी का डेफिनेशन है, तीन चार चीजें जाननी है भोगी। भोगी मतलब है जिसको जो मिले वो कम है, जितना मिल जाए वो कम है, ये भोगी का पहला लक्षण है। करोड़ों है या सो में है वो दुखी है क्योंकि कम है। दूसरा, जो मिल गया वो बेकार है, जिसके लिए वो तड़प रहा था वो मिल जाए वो बेकार हो जाता है, जो नहीं मिला उसी में ही कोई इराद छुपा हुआ है। जिस धन के लिए तड़प रहा था, जिस पोस्ट के लिए तड़प रहा था, जैसे ही पोस्ट मिला अब वो पोस्ट छोटा लगने लगा, अब ऊपर का पोस्ट बड़ा लगने लगा। जिसके चक्कर में वो प्यार के चक्कर में घूमता था शादी होते ही, अब उसमें वो सुंदरता नहीं दिखती है, अब दूसरी जगह सुंदरता दिखती है। जो मिल गया, जब तक नहीं मिला उसमें कुछ रस है, जैसे ही मिले वो नीरस हो गया, फिर नई चीज की डिमांड है, ये भोगी का लक्षण। तीसरा लक्षण है उसकी जो आशाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो अनंत है, और उसकी जो बॉडी की जो लिमिटेशन है, जो उसके शरीर की जो इंद्रियों का जो शक्ति है वो लिमिटेड है, और उसकी इच्छाएं अपरिमित है, अनलिमिटेड है, इसलिए क्योंकि वो अपनी इच्छाओं को अपने शरीर से पूरी नहीं कर सकता तो हमेशा दुखी मिलता है। तो भोगी आदमी के तीन लक्षण, जो मिले कम है, जो मिल गया वो बेकार है, जो नहीं मिला उसी में इंटरेस्ट है, और इच्छाएं इतनी, और शरीर और अपनी इंद्रियां, अपनी मीन्स, अपने इंस्ट्रूमेंट साधन इतने कम, कभी वो सुखी नहीं हो सकता, इसलिए स्वर्ग में भी जाए वो आपको दुखी मिलेगा। और दूसरा, जो साक्षी भाव से, जो विटनेस भाव से दुनिया को जीता है उसका क्या लक्षण है? जो मिल जाए, जितना मिल जाए, अनुग्रहित है, धन्य धन्य है, ईश्वर की कृपा है, ठीक है, जो मिला काफी है, संतोष भाव है उसमें, सब ईश्वर की कृपा समझता है। दूसरी है, जो कुछ उसके द्वारा होता है, वह उसके साथ होता है, वो उसको खुद से अलग रखता है। दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बैक स्टेज में बैठते हैं पर फ्रंट स्टेज का काम करने के बाद हमेशा बैक डोर में होते हैं। बहुत सारे लोग जो, जैसे अभी मैंने शुरू में कहा,
जिनकी आदत नहीं है, जो कुछ करे ना करे पर नाम लेने के लिए आ जाते हैं, जिनको आगे रहने की, जो भोग रिजल्ट पाने की जिनको उतावला है, परिश्रम करे नकल है, जैसे भारत में है वो नकल करके बहुत सारे बच्चे डिवीजन लेने की कोशिश करते हैं, रिश्वत देने की नौकरी, क्या है रिजल्ट चाहिए, बाकी हम कैसे भी कुछ भी करें परिणाम हमें मिलना चाहिए, और खुद को उसके अटैच कर दें। पर जो साक्षी है वो सब कुछ करने पर भी अपने आप को कहीं जोड़ता नहीं, तीसरी उसमें कोई इच्छाएं नहीं होती, वो जो कुछ करता है इसीलिए करता है क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है, कर्तव्य है, खाना खाना है इसीलिए नहीं कि स्वाद चाहिए, जिंदा रहने के लिए खाना खाना जरूरी है, बच्चों को प्यार करना है इसीलिए नहीं कि कोई अटैचमेंट है, इसीलिए कि बच्चे ईश्वर ने मुझे दिया है, मेरी ड्यूटी है उनको ठीक से परवरिश करना, उनको जो डिमांड है उनके प्यार देना, इसलिए देना है। जब साक्षी भाव से जीते हैं तो गरीबी में भी सुख मिलता है, बुरी हालत में भी सुख मिलता है, नरक में भी सुख मिलता है। जो भोगी हालत में जीते हैं, बच्चे नहीं है तो भी दूसरों के बच्चों में अटैचमेंट करके तब भी दुखी बनते फिरते हैं, पैसा नहीं है तो भी दूसरों के पैसे देख करके दुखी होकर घूमते हैं। तो दुनिया में दो तरह के जीने की तरीका, भोगी और साक्षी। जब ब्रह्मचर्य आश्रम से व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में आता है तो वो गृहस्थ बनता है, वो भोगता है, पर उस भोगने में उसको सुख मिलता है क्योंकि उस भोगने में उसको प्रेय नहीं दिखता। पर दूसरा जो दुनिया को भोगने के लिए परेशान है, वो ना भोगे तो भी दुखी, भोगे तो भी दुखी होता है। इस तरह के जो हमारे जीवन में दो तरह की चीजें हैं, यमराज ने भूमिका के रूप में श्रेय प्रेय को समझाने के बाद आगे की बातें हम आगे करेंगे क्योंकि समय हो चुका है। नचिकेता किसी और क्या बात करते हैं, हम अगले बार इसकी चर्चा करेंगे। ओम शांति।